हम सभी करतल धुनी से आदरणीय रामनाथ भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई जी 1972 में, आज से 50 साल करीब पहले, इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ कर्नाटक से, और उसके बाद अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 78 में आपने संपूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भाई जी टोली डिपार्टमेंट के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन तीनों के इंचार्ज हैं। भाई जी को साधु संत महात्माओं ऋषियों की सेवा करने में विशेष रुचि है, इसलिए आप न सिर्फ भारत के कोने कोने में लेकिन विश्व के अनेक देशों में जाकर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करते हैं और आप धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। भाई जी का जीवन न सिर्फ वो बोल करके हमें ज्ञान से भरपूर करते हैं, लेकिन इनके चेहरे और चलन से ही वो ज्ञान खजानों से हम भरपूर हो जाते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा कि अपनी सूरत और सीरत से बाबा से जो हमें खजाने प्राप्त हैं वो दिखाना चाहिए, तो आज भाई जी हमें बाबा से जो खजाने प्राप्त हैं तो सर्व खजानों से संपन्न कैसे बने, इस विषय पे मार्गदर्शन देंगे। भाई जी को स्वच्छता बहुत पसंद है, न सिर्फ तन की लेकिन मन की, क्योंकि सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो ऐसे साहेब को राजी करने वाले हमारे आदरणीय भाई जी बहुत ही सरल चित, हर्षित मुख और अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। भाई जी के लिए तो यही कहेंगे कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। तो ऐसे आदरणीय भाई जी का हम पुनः स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है कि सर्व खजाना से अपने आप को कैसे भरपूर करें। कि कल बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बाप उन बच्चों को देखता है, किन बच्चों को, जो सर्व खजानों से भरपूर है। तो खजाने कौन से? मुख्य तीन है। एक है ज्ञान के खजाने, एक है शक्तियों के खजाने और एक है आज वर्तमान समय गुणों के खजाने। गुण चाहिए कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए गुण चाहिए, शक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ये तीनों खजाने जमा करना चाहिए। तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, ये तीनों खजाने मेरे अंदर कितना जमा है। उससे पहले पता होना चाहिए कि ज्ञान के खजाने हम कैसे जमा करें, शक्तियों के खजाने कैसे जमा होते हैं, गुणों के खजाने कैसे जमा होते हैं, उसकी विधि है। सिर्फ मुरली सुनी, ज्ञान सुना तो खजाने जमा नहीं होते। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो याद नहीं रहता है, आचरण में नहीं आता है। तो मुरली के अगर खजाना जमा करना चाहते हो, उसकी विधि है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो उसका एक तरीका है, जब आप आराम से रोज मुरली सुनो, सारी मुरली सुनते सुनते देखना आप मेरे लिए बाबा ने क्या कहा। तो मेरी कमी मैं जानता हूं, तो उस कमी को ठीक करने के लिए, मिटाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तो सारी मुरली के अंदर बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, वो एक शब्द, एक पॉइंट कोई भी, ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि हम इतना सब याद नहीं रख सकते। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी विधि है कि रोज नए नए पॉइंट्स मिलता है, रोज नई नई मुरली मिलती है, इसलिए हमको एक ही दिन बहुत कुछ लेने की इच्छा जरूरत नहीं है। तो एक ले लो बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे, और वो भी अपने इच्छा के अनुसार ले लो, क्योंकि मुरली में चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा कैसे करना चाहिए उसके लिए बाबा ज्ञान देता है, योग कैसे करना चाहिए उसके लिए पॉइंट्स बताता है, फिर धारणा कैसे करना चाहिए उसके लिए सुनाता है, किसी को ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए उसके लिए सुनाता है। तो उसमें से हरेक का अपना अपना लक्ष्य है, मुझे क्या चाहिए उस अनुसार आप एक मुरली के अच्छा पॉइंट धारणा के लिए सुनो, नोट करो, लिखना जरूरी है, नहीं तो सुना याद नहीं रहती है। तो नोट करना, नोट करने के बाद यहां से आप नाश्ता करने जाते हो, नाश्ता भगवान ने दो हाथ दिया, एक हाथ शरीर को खाना खिलाते हो, एक हाथ खाली है, तो उस समय लिख के जो रखा जेब में रखा कहीं रखा निकाल के पढ़ो, एक ही शब्द, आज क्या करना है, आज क्या कहा था, उसको कहते हैं बाबा की याद करते हुए नाश्ता करो। तो क्या याद करेंगे, उन्होंने जो कहा सवेरे श्रीमद दिया वो याद नहीं रहता है। बहुत सारी बातें हैं संसार में, आज वर्तमान में किसी का मन, दिल, बुद्धि खाली नहीं है, ओवर अपॉइंटमेंट्स है, इतनी बिजी है। तो ऐसे समय पर तो एक शब्द नोट करो, जाके नाश्ता करते हुए नाश्ता करो, नाश्ता करते करते अपने को पढ़ा, आज बाबा ने मुझे क्या कहा, बस इतना ही। अगर कर सकते हो तो चिंतन करते करते नाश्ता करो, नहीं तो सिर्फ याद दिला दो बस, फिर उसके बाद जो चाहे करो। दिन में खाना खाते हो तो बाबा के याद में खाना खाओ कहते हैं, तो याद आती नहीं है, नहीं रहता है आपको, नहीं हमें भी नहीं रहता है, जो लिख के रखा है वो पढ़ो, खाना खा लो, कोई तकलीफ नहीं है, याद नहीं रहता है करके छोड़ना नहीं, उपाय करो, निवारण करो। रात को सारा दिन काम करो, रात को खाना खाते हो, शरीर को तीन दफा खाना जरूरी है, इसलिए कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम तीन दफा हम खाना खिलाते हैं। तो आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए कम से कम तीन दफा रात को खाना खाने बैठते हो तो बाबा ने क्या कहा था आज, पढ़ो। ये फर्स्ट सुनना, दूसरा लिखना, तीसरा अपने आप को मिनिमम तीन दफा पढ़ाना चाहिए, कम से कम, ज्यादा पढ़ा सकते हो। और चौथा एक है, जो आपने सुना अपने आप को पढ़ाया, जरूर सवेरे से शाम तक एक दो तीन चार लोगों को सुनाना जरूर चाहिए, तब संस्कार बनता है, तब धारणा होती है, सिर्फ सुनने से, लिख के रखने से भी नहीं, अपने आप को पढ़ाने से भी नहीं, औरों को सुनाना जरूर चाहिए। तो ये चार काम अगर आप करते हो तो रोज एक बूंद जमा कर सकते हो, एक खजाना है। और ये क्यों खजाना है, ये देने वाला कौन, मनुष्य नहीं, महात्मा नहीं, कोई देव आत्मा नहीं, स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान है वो, और वो अविनाशी है, विनाशी नहीं है, वो जो देता है वो भी अविनाशी है। आज ने सारे कल्प के लिए वो ज्ञान काम में आएगा, तो ये ज्ञान धन कहा, आप पूछेंगे, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, किसी ने किसी को धन नहीं दिया, तो इतना बड़ा ये हॉल कैसे बन गया, ऊपर से पैसे आए, आज आपके सेंटर में इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया, जो सेंटर की टीचर है वो नौकरी करती है, कमाई करके लेके आई नहीं, मुरली सुना रही है। तो इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया? ज्ञान धन है, जितना आप ज्ञान सुनाते हो उतना धन अपने आप आता है। कोई ज्ञान मंदिर में भी जाओ भंडारे में कुछ डालते हैं, तो यहां भी मुरली सुनी, ज्ञान सुना, भंडारे में धन जमा होता है, अपने आप मिलेगा। तो ज्ञान धन जमा करो। अगर किसी को सुनाते भी आप हो, आप कभी भी, वो भी कहेंगे इन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाया, कभी इनको मुझे सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से, आज नहीं कभी न कभी आपको सहयोग मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से मदद मिलेगी। तो ज्ञान धन, एक बूंद बस रोज। और विधि, सुनना, लिखना, कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाना चाहिए। 1, 2, 3, 4 सवेरे से रात तक किसी का फोन आया, बात करो, बिजनेस करो, तो याद नहीं रहता है, निकाल के पढ़ के आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। सिर्फ बाबा भी नहीं कहना, बहुत बाबा आया है, तो एक ऐड करना जरूरी है, शिव बाबा बोलना जरूरी है। ये सुनाने वाला कौन सा बाबा है? रामदेव बाबा के और कोई बाबा? शिव बाबा, वो जो निराकार है, जो सर्वशक्तिवान है, उसके पीछे टाइटल है, तो वो याद आएगा। तो इसलिए ये 4 काम अगर आप करते हो रोज, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ पढ़ना सुनना जरूरत नहीं है और याद भी नहीं रहता है और बुद्धि के अंदर इतनी जगह भी नहीं है, भर गई है बहुत जन्मों से, 63 जन्मों से क्या क्या भरा हुआ है। तो उसके लिए एक बूंद, 30 दिन में 30 महावाक्य हमारे अंदर जमा है। कल बाबा ने ये कहा था, 1 महीने पहले ये कहा था, जब जब जरूरत पड़ी। और क्यों? मेहमान आने के बाद खाना नहीं बनाते हैं, पहले बना के रखते हैं, प्रिपरेशन चाहिए। कुछ होने के बाद ज्ञान नहीं याद आता है। जैसे श्री राम वनवास में गए तो बहुत साधु संतों ने उनको वरदान दिया। कौन सा वरदान? अस्त्र शस्त्र दिए, जो उन्होंने तपस्या करके जमा किया था अपने लिए। तब कहा, हे राम, आपके जीवन में आगे जाके ऐसी परिस्थिति आएंगी तो आपके लिए यह अस्त्र काम में आएगा। उसको उस समय जरूरत नहीं थी, पहले से ही जब परिस्थिति आई। एक जगह पर ऐसे हुआ कि लक्ष्मण भी गया, सीता भी गया, राम अकेला हो जाता है, खर भूषण राक्षस उसके पर हावी हो जाता है, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तो क्या करो? एकदम आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है। तो याद आते अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। ये आपके और हमारी यादगार है। जो बाबा आज मुरली सुनाता है, एक एक पॉइंट जो धारण करने वाला, तो आज लेकर उसका चिंतन मंथन कर औरों को सुनाकर डिस्कशन कर आप जमा करते हो। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है। 1 साल के बाद, 10 साल के बाद काम आएगा। उस दिन बाबा ने ये कहा था, जब परिस्थिति आई और आपने तैयार करके रखा है, उस दिन बाबा ने ये कहा था। आकाशवाणी ऊपर से बाबा ज्ञान नहीं सुनाएगा उस समय, बाबा टचिंग देता है, कहते हैं टचिंग मतलब पावर देता है, अंदर रिकॉर्डिंग है। तो बाबा की शक्ति और ये ज्ञान काम करता है। अगर अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, शक्ति है, शक्ति देता है वो, टचिंग देता है, ज्ञान नहीं है तो कुछ याद नहीं आता है। तो शस्त्र के रूप में, अस्त्र के रूप में जमा करो, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, बहुत आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, पेपर है, बीमारी है, दुख है, अशांति है, वो अनगिनत है। कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। और चाहे लाख करो चतुराई, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए बाबा रोज बच्चों के अस्त्र, देते सब देखो आज भारत कितने सालों से पाकिस्तान और भारत के समय बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है, कितने सालों से कितना पैसा भारत के गवर्नमेंट को बिना मतलब का खर्च करना पड़ता आर्मी के लिए, नहीं तो भारत गरीब नहीं है। सारा पैसे कहां जा रहा है? अपने बचाव के लिए अस्त्र शस्त्र जमा करना पड़ रहा है। तो यहां भी एक कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है, किसके साथ किस समय हमारा क्या हिसाब किताब होगा उस समय ढूंढने जाओ कुछ नहीं होगा। इन एडवांस प्रोटेक्शन प्रिपरेशन आज ही जमा करो, आज सुना आज ही प्लान करो, आज ही ये ज्ञान जमा करो, आज कल कभी ना कभी सारे कल्प में काम में आएगा ये ज्ञान धन जमा। आपने करोड़ों का धन जमा किया, छोड़ के जाना है, कोई व्यक्ति लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या जमा करना चाहिए वो सोचना थोड़ा सा। अभी अभी हमने सुना इस कोरोना के समय पर, मतलब भारत अभी भी गरीब नहीं है। तो एक व्यक्ति गुजरात का एमएलए था पहले इसका था, कोई राज परिवार का था, कोरोना के कारण बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, अंत में किसी के मदद से मिल गया, जीवित होके बाहर आया। तो उसको लगा उसके पास इतना धन इतनी संपत्ति है, 75 करोड़ एक दो नहीं पैसे बांटे सबको बुला करके, किसको 5 लाख किसको 2 लाख। कहते अगर मैं चला जाता था राजा खा के जाता था, चोर लूट के जाता था, कोई आग में मिल जाती थी। रियलाइज हुआ धन बहुत भरा हुआ है, हीरे मोती भारत के अंदर अभी भी जमीन के अंदर, बैंक में नहीं रखते, भारत के अंदर जमीन में रखते हैं, छुपा के रखते हैं, धरती मां के गोद में रखते हैं। तो धरती मां पर विश्वास है, कल निकाल सकते हैं। अब देखो उसने निकाल के सबको बांटा। तो भारत के अंदर अभी भी संपत्ति है, तो कैसे आप भी अपने अंदर जमा करो। तब बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए मैं गारंटी करता हूं एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे अपने आप नहीं। अब जमा करो, ये वेल्थ है। बाकी कुछ भी जमा करो कोई चीज आपके साथ नहीं जाएंगी। सिर्फ मुरली पढ़ करके जमा के वैसे नहीं, जमा करने की विधि चाहिए। नहीं तो बहुत कुछ ज्ञान सुन लिया मैंने पढ़ लिया, नहीं होगा। जमा करने की बूंद बूंद एकदम याद नहीं रहेगा, एक ही बूंद बस आज ही, उसमें अंदर लोभ नहीं करना। ज्ञान भी जमा करने के कभी कभी लोभ होता है, बहुत कुछ सुने हम, नहीं एक ही बूंद बस, एक बाबा के मुरली के पॉइंट बस रोज, बहुत लोभ नहीं करना, वो भी जमा नहीं होता है। उसका चिंतन करो, मंथन करो, किसी आपस में कोई भी मिले सवेरे से रात तक लेन देन करो, जो ये आदत डालो उसका नाम है ब्राह्मण। मुरली सुनने से ब्राह्मण नहीं है, नोट करके रखने से ब्राह्मण नहीं है। तो सवेरे से रात तक अपने आप से पूछो कि मैंने सवेरे मुरली सुनी थी शाम को याद है, तब आप कहेंगे आपकी बुद्धि दिव्य है। बुद्धि दिव्य स्वच्छ तब रहती है जिसके अंदर ज्ञान की धारणा है। ये ज्ञान गंगा जल है जिसमें पाप मिट जाता है। तो ये गंगा जल जो पाप को मिटाना, आपसे पाप करना नहीं देगा आपको। जिसके अंदर ज्ञान की याद नहीं है, ज्ञान सुना है लिखा भी है, हर सेकंड बीमारी होंगी, कोई ना कोई व्यर्थ चलेगा, पाप होगा, तो वो अंदर से दवाई रखने से नहीं, उसका चिंतन करो, वर्णन करो। कोई भी मिला सवेरे से, फोन आया, कोई नहीं मिला, फोन करके भी बात करो, बिजनेस करो, आज लिखे रखा आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, एक आदत डालो। सवेरे से रात तक मुझे 5-10 लोगों को सुनाने, ये ज्ञान खजाने जमा करने की विधि। और आप में से कोई चाहते हो, कल बाबा ने कहा था रात को, दोबारा कब आएंगे याद है किसी को, कल दोबारा कब आएंगे मधुबन में? किसी ने ध्यान से सुना कल कब आएंगे? कौन बताएगा? हाँ, व्यर्थ या क्रोध मुक्त होके आओ, तो उसकी दवाई देना पड़ेगा ना। अब भाई जी, हम क्रोध छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़े? व्यर्थ छोड़ना चाहते, उसकी भी ये दवाई है। 10 दिन एक मुरली के पॉइंट आप नोट करो, 3 दफा अपने आप को सुनाओ, 2-3 दफा दूसरों को सुनाओ, 10 ही दिन, और 11वां दिन देखना, फिर हमको बताना कि इस बीमार दवाई से क्रोध गया कि नहीं है। क्रोध को मिटाने की भी ये दवा है। क्रोध बेहोशी में आता है, और दुनिया में बेहोश वालों को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है। तो 3 दफा अपने आप को सुंघाते हो, याद दिलाते हो, तो वहां बेहोश नहीं हो सकते, होश रहता है। नहीं, उन्होंने गलत किया, मुझे नहीं करना है। उन्होंने अन्याय किया, मुझे नहीं बोलना है। तो ये ज्ञान वो चीज है, तो क्रोध से बचाएगा आपको। क्रोध को मिटाना भी, उसकी भी दवाई चाहिए। अपने आप नहीं जाएगा, मुरली सुनी योग के अपने आप क्रोध जाएगा नहीं। हर बीमारी के अलग अलग दवाई है, तो करके देख लो। तो ये दवा है क्रोध को मिटाने के लिए। ज्यादा नहीं, 1 साल 1 महीना नहीं चाहिए, मिनिमम 10 दिन बस करके देख लो, रोज एक मुरली। तो ज्ञान का खजाना जमा कैसे होता है? बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से, बहुत लिख के रखने से नहीं है, ठीक है। दूसरा, शक्ति चाहिए। तो कौन सी शक्ति चाहिए? एक आत्मा के 8 शक्तियां, सहन करना चाहिए, समाना चाहिए, लेकिन सहन होता नहीं है। दर्द दुख सहन ऐसा नहीं होगा, चाहते हैं वो, कहां से आएंगे शक्ति? कहां मार्केट में मिलती है? नहीं। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो आप में से कोई बताएगा शिव बाबा की सर्वशक्तियां कौन सी है? सर्वशक्तिवान का। और बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो मेरी शक्ति से पाप मिटेगा, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग एक ही शब्द है। राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से पाप विनाश होगा। यही है ना, और कुछ नहीं है। तो आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो बाबा को क्या याद करेंगे? सर्वशक्तिवान है वो, कौन सी शक्ति है? दूध का भी सागर है? नहीं, ठीक है, तो भी नजदीक आया। और इधर कौन बताओ? शिव बाबा को सामना करना पड़ेगा? नहीं, आपकी शक्ति अलग है, शिव बाबा की, वो सर्वशक्तिवान है ना। तो उनके पास कौन सी शक्ति है? आपके पिताजी के पास अलग है, आपके पास अलग है। तो पिताजी के पास कौन सी शक्तियां है? हाँ, सर्वशक्ति कौन सी है वो? हाँ, और हाँ नहीं, सब मिक्स हो गया ना। शिव बाबा की 8 मुख्य शक्तियां है। कल बाबा ने बताया, आज मुरली में बताया भी, लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की देवी है ना। एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो, कहा पीएचडी करो, अधिकार प्राप्त करो। तो कौन सी सर्वशक्तियां है? मुख्य 8 शक्तियां मुरली में आता है, पवित्रता का सागर बोलते हैं। पवित्रता इतना नहीं, वो देवी देवताओं की, आपकी भी पवित्रता है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। अगर कुछ करो, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। आज बताया, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? जैसे भाई जी ज्ञान में चलने से पहले भी दान करता था और आज 5 सालों के ज्ञान में चलता है, आज भी दान करता है, तो दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? पहले भी वही भिखारी आता था, अभी भी वही आ रहा है। तो अब भी कहा पद्मों की कमाई, पहले एक का एक गुना, क्यों? वही व्यक्ति है। हाँ, पहले जब वो देखता था अरे भिखारी है, गरीब है, ये शरीर को देखते हुए दान करता था, अभी वही व्यक्ति सामने आ रहा है, तो ये शुभ बाबा का बच्चा है। शुभ बाबा को याद करते हुए दान करता है, पद्मों की कमाई जमा होती है। तो जमा करने की विधि बाबा बताए, भाग्य बनाने की विधि, थोड़े से समय के अंदर कर्म वही है, कर्म चेंज नहीं है, विधि चेंज है। तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, तो भाग्य बनाने की विधि बताता है। और 8वां दिव्य बुद्धि दाता है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, 8 मुख्य शक्ति है। तो बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, तो एक एक सारी शक्ति के ऊपर बनो, सारी नहीं होता, कम से कम एक शक्ति के ऊपर मास्टरी अधिकार प्राप्त करो। मास्टर एक शक्ति, पवित्रता, पवित्रता के सागर बनो, मास्टर पवित्रता के सागर बनो, मास्टर ज्ञान के सागर बनो, एक के ऊपर। तो वो चाहता है सर्वशक्तियों के ऊपर बनो, तब मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। ऐसा नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे डॉक्टर नहीं बनता कोई, ऐसे पीएचडी नहीं बनते। तो उस शक्ति को अब कैसे करेंगे, अभी उसकी विधि है, उस शक्ति को कैसे जमा करें, तो विधि बताया आत्मा समझ मुझे याद करो। तो अभी आत्मा कैसे समझो, अभी बहन जी तो दिखाई देती है, हमने भाई तो नहीं कहा, बहन जी कहा, बहन जी कहती मुझे समझो, तो आपको कैसे समझू, कैसे समझू, भाई तो दिखाई देता है, तो भाई को कैसे, भाई आत्मा है, पता है सभी आत्मा ही है, फिर भी कहते मुझे समझो, कैसे समझो। हाँ वो विधि है इधर, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा के कौन सा राजयोग सिखा रहा है, प्रश्न आएगा। तो यहां राजयोग अलग है, हम वही रिपीट कर रहे हैं जो दुनिया में सुनाया जा रहा है, नहीं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग करने की, तपस्या करने की अलग विधि है, वो शिव बाबा आके सुनाता है। इसलिए याद अलग, योग अलग, तपस्या अलग, इसको तपस्या कहते हैं। आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, तो कैसे करेंगे आप, तो योग, तो जब अमृत वेले और शाम को 2 टाइम सिर्फ आके खोल के आराम से बैठो, छत पर बैठो, गार्डन में बैठो, कोई चित्र के सामने बैठो, बाबा के सामने कहीं भी बैठो, आराम से आंखें खोलकर, आंखें बंद करते सोते समय आराम से बैठो, अपने आप से बात करो। बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, 1 व्यक्ति नहीं, तो किससे बात करेंगे, भारत में 1 हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ, 1 हाथ से भारत में नहीं करता है। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, मन और बुद्धि। तो मन प्रश्न करता है, आपने 7 डेज कोर्स किया, ज्ञान सुना हुआ है, बुद्धि के अंदर याद है क्या सुना था, तो मन योग में बैठते हो अमृत वेले या शाम को, पूछो, ये तरीका है, मैं कौन, पूछना, मैं आत्माओं नहीं कहना, पूछ लो पहले मैं कौन। बुद्धि के अंदर समझ है, निश्चय है, विश्वास है, समझ में आया, तुरंत बुद्धि जवाब देगी, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। उसको कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय नहीं है, ज्ञान सुना है, कहां आत्मा है, किसने देखा है, उन्होंने कहने से मैं मानू, नहीं जवाब आएगा, वहां नींद आती है, वहां व्यर्थ विचार चलते, वहां माया आती है, क्योंकि बुद्धि को जो ज्ञान सुना वो विश्वास नहीं है, वो जवाब नहीं देती है। और जिसको विश्वास और निश्चय है वो बुद्धि को होती है, मन को नहीं। बुद्धि के अंदर समझ है, मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर दूसरा मेरा रूप तुरंत याद है, हाँ उस दिन बहन जी ने कहा था मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा मेरे गुण, हाँ मैं सत्युग में आया था परमधाम से, पवित्र था, शांत स्वरूप था, अभी नहीं हूं, अब मुझे पवित्र बनना है, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, ऐसा नहीं, मैं था, अब नहीं हूं, अब बनना है। एक एक गुण याद करो, दैवी गुण और आसुरी गुण। मुझे क्रोध आता है, झूठ बोलता हूं, ये करता हूं, ये आसुरी गुण है, अभी नहीं, मेरे गुण, मैं आत्मा हो गया, आत्मा के गुण, मैं संपूर्ण पवित्र था, अब मुझे बनना है। चौथा मेरे कर्म, हाँ मैं इन आंखों से देखता हूं, अभी योग में बैठा, कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं देखना है। तब कहते हैं रिलैक्स, डिटैच, अशरीरी, शरीर को हिलाओ नहीं, आंखों को हिलाओ नहीं, स्थिर बैठो, हाथ पांव हिलाओ नहीं, कौन आया कौन गया, 10-15 मिनट, एक घंटा दो घंटा नहीं, आराम से स्थित होके बैठो। पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम से। जैसे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो, कर सकते है? करो, अब आए ना, बात तो नहीं कर सकते, नंबर चाहिए तो शिव बाबा से बात कर सकते हो, तो कौन सा नंबर है शिव बाबा का, नंबर है शिव बाबा का नंबर बताओ ना, मोबाइल से जीरो है, बाबा ने भी निटा दिया, जीरो है ही नहीं है, शिव बाबा का ये पांच नंबर है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, ये पांच प्रश्नों का चिंतन करते हो, ये पांच नंबर है, इसका चिंतन करते हो, आत्म अभिमानी बन गए। तब तक आपके विचार वहां नहीं जाएंगे, जब तक ये पांचों नंबर आपने नहीं किया तो आपके विचार ऊपर नहीं जाएगा, तो देधारे माया रावण विचार आएगा ही, क्योंकि नंबर नहीं है पूरा, तो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये याद रखना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, और पांचवा मैं कहां से आया, तो परम धाम से आया। परम धाम में कौन है, अब आया शिव बाबा, कोई चित्र नहीं, विजन नहीं, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं, आराम से बैठो ऐसे ही, जैसे आप यहां से अमेरिका में किसी को फोन करना है, उसको देखते हो, पहले इमर्ज करते हो, नहीं नंबर डायल दिया, आपके वाइब्रेशंस, संकल्प पहुंचता है, आराम से बैठो, बाबा परम धाम, परम धाम में ऊपर है, कहां है पता नहीं, ऊपर है, कौन है वो, पवित्रता का सागर, बाबा आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो, तो आपके जैसे पवित्र कैसे बने हम, चिंतन करो, सोचो, हाँ शरीर स्वच्छ होना चाहिए, मक्का कमरा स्वच्छ होना चाहिए, बिस्तरा स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, खाना स्वच्छ होना चाहिए, आंखों से जो देखते हो गलत चीज, व्हाट्सएप पर, मोबाइल में, इधर उधर गलत चीज नहीं देखना है, गलत चीजें, कोई पर चिंतन, इधर उधर की बातें करता है, गलत चीजें नहीं सुननी है, गलत किसी का हाथ का बना हुआ कैसा वो नहीं खाना है। तो पवित्रता क्या है, खोलो, बाबा चाहता है किसमें पवित्र बनो, मैं शुरू करो, घर से शुरू करो, गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ आश्रम जैसे स्वच्छ हो, घर इतना न मक्खी न मच्छर न कई जाली, एकदम साफ स्वच्छ, फिर जिस घर में मैं रचता हूं शरीर स्वच्छ, शरीर के अंदर बिस्तर का खटिया स्वच्छ, कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं नहीं, साफ स्वच्छ, कपड़े के बाद शरीर को किसी के बाजू में बैठो बास आती है, मोजे पहनते हो पसीना आता है, नहीं शरीर सुगंध, देवताओं के शरीर से सुगंध, शरीर को दो दफा स्नान करो, बाथरूम में जाते हो, लैट्रिन जाते हो, स्नान करो, शरीर को स्वच्छ रखो, नहीं तो आज गवर्नमेंट कह रहा है कि बार बार हाथ धो लो, क्यों धोना चाहिए, कुछ लगा ही नहीं है, इतने सूक्ष्म जर्म्स बैठते हैं, दिखाई नहीं देता है, बीमारियों का कारण, स्वच्छता, शरीर को स्वच्छ रखो, कभी भी किधर हाथ लगाए बार बार धो लो, साफ करो, ऐसा नैपकिन रखो दो दो हाथ में, कहीं भी हाथ लगाओ साफ करो,
तो स्वच्छता चाहिए, पवित्रता है। फिर खाना किसी ने बनाया, किसी ने हाथ से दिया, नहीं उसका हाथ साफ था, नहीं किसी का हाथ का कहीं भी नहीं खाना है। किसी ने बना हुआ कैसे बनाया, कोशिश करो जितना किसी का नहीं खाना है, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, तब कहेंगे पवित्रता। बाबा चाहता है मेरे बच्चे ऐसे पवित्र बनो, ऐसे शांति, एक एक शक्ति के ऊपर चिंतन करो, कंपेयर करो बाबा से, मांगो नहीं। बाबा ऐसे शक्ति किसी को नहीं देता है, देने वाला नहीं है। बाबा आप किससे, अब उसको सामने रख के उसका चिंतन करो, उसको कंपेयर करो। हमारा बाप पवित्रता का सागर, तो मुझे कैसे पवित्र बनना चाहिए? बाबा शांति का सागर, मुझे कैसे शांत होना चाहिए, किन बातों में शांत होना चाहिए? तो एक एक शक्तियों को लेकर, आठ शक्तियां हैं। मैं अपना भाग्य कैसे बनाऊं, सोचो चिंतन, कैसे क्या करूं, जमा करो, किस प्रकार के कर्म करो, कैसे ज्ञान सुनाओ, कैसे तन से मन से धन से सेवा करो, क्या जमा होगा, सोचो चिंतन बुद्धि। इसलिए बाबा से बात करो का एक शब्दों में कहते हैं, आत्मा समझ मेरे से बात करो। तो बाबा मेरा दुख दूर करो, मेरे बच्चों को ऐसा करो, ये नहीं, ये बातें सूक्ष्म तन में करो, बाबा के कमरे में करो, शुभ बाबा से नहीं। शुभ बाबा को शरीर नहीं है, शुभ बाबा से जब बात करते हो ओनली शक्तियों के ऊपर, वो सर्वशक्तिवान है। बाकी जो कुछ है बाबा के कमरे में बैठो, सूक्ष्म तन, उसको रूरियान कहा। यहां शक्ति है, शक्तियों के खजाने चाहते हो, ये आठ मुख्य शक्तियां हैं। अगर ये रोज करते हो, तब जो बहन जी बता रही थी, अगर किसी ने बहुत गुस्सा किया, नहीं चुप, ब्रेक, सहन करने की शक्ति है, ब्रेक पावरफुल है, पावर उधर से लिया तब ब्रेक लगता है, नहीं तो चाहते हुए लगता नहीं है, 10 बातें निकल जाती है। कहते फुल स्टॉप लगाओ, कैसे लगेगा, पावर चाहिए, वो पावर, सहन कर, किसने गलत सुनाया संभालो, कहते चुप रहो, दूसरों को बताओ नहीं, नहीं रहता है, निकल ही जाता है। क्यों, सहन समाने की शक्ति कहां से आएंगी, वो शक्ति, सहन कर नहीं, सुनाना नहीं, बोलना नहीं, समा लेना, चुप रहना है। तो ये जो आत्मा के अंदर अष्ट शक्ति भरना है, तो ये सर्व शक्तियों से योग लगाओ। योग लगाने के तरीके, एक एक शक्तियों को अपने आप कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से भी नहीं होगा, शक्तियों का चिंतन करो, जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो शक्तियों का चिंतन करते हो शक्तिशाली बनेंगे, ज्ञान का चिंतन करते हो ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे, व्यर्थ चिंतन करते हो, किसी देहधारी का चिंतन करते हो तो देही अभिमानी बनेंगे, देह अभिमान वाले होंगे। तो व्हाट यू थिंक, क्या सोचते हो, आज की दुनिया में शक्ति चाहिए कि अंतिम समय आ गया है, तो इसलिए शक्तियों का चिंतन करो, तो तब ये खजाने जमा होंगे, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, बोलो डॉक्टर बन जाएंगे आप, मैं राजा हूं, राजा हूं, राजा बन जाएंगे, तो ऐसे हो गया ना, पोपट पड़ाना हो गया, नहीं, एक एक शक्ति ले लो, शिव बाबा की कौन सी शक्ति, उस शक्तियों का चिंतन करो, बाबा आप किस में पवित्र हो, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो। तो बाबा आप क्या चाहते हो, मुझे कि आप किस बातों में पवित्र बनना है, कैसे शांति का सागर, शांति माना क्या है, आनंद का सागर, आनंद माना क्या, आप सोचो। सिर्फ सुनना इतना ही नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपने सुन लिया, टीवी में खाना देख लिया, पेट भर गया ना, खाओ नहीं, टीवी में देख लिया, कभी कभी हम योग में बैठते टीवी चलाते योग कर रहे हो, देख रहे आप भी योग कर रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, टीवी में बहुत प्रकार का खाना दिखाई देता है, आप देखते बैठो पेट भर जाएगा। देखना सुनना और करना अंतर है, नहीं तो योग में बैठे हो देख रहे हो, कमेंट्री चला रहे हो, सुना रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो, आपका मन बुद्धि नहीं, देख रहे हो आप। जैसे खाना देखने से पेट नहीं भरता, खाना है, ताकत चाहिए, तो करना है, सुनो, देखो, फिर आप बैठ के करो। समझ में आया? तो इसलिए सर्व खजाने कैसे जमा करने? समझ में आया? शक्ति, अभी गुण आया। कर्म संसार है, हर एक प्रकार, एक हाथ पांच प्रकार के अंगुली, अलग अलग, एक जैसा नहीं, बहुत कुछ होता है, हर कदम में होता है। तो गुण, मुझे देवता बनना है, मुझे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं, रावण का नहीं। तो ये अगर स्मृति है, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो निंदा कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है सामने वाला, मुझे क्या करना है? मुझे शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूं, तुम मेरे मत पर चलो, मैं देख लूंगा, है ना। तो अगर जिसको बाबा पर विश्वास है वो चुप रहता है, जिसको विश्वास नहीं, एक का चार सुना देगा और अपना 5000 साल के लिए हिसाब किताब बना देगा, आयते हिसाब किताब मिटाने के लिए, और 5000 साल और 4 गुना हिसाब किताब बना रहे हो, क्योंकि एक का 4 जवाब दिया, वो भी और 4 देगा। तो यहां आया, सहन कहां करना है? देखा आपने बहुत कुछ गलत, देखा, चुप रहना, किसी को सुनाना नहीं, कि भगवान का वो देखता है, उसको सुनाओ, औरों को नहीं सुनाना, भगवान के बच्चों की निंदा कर रहे हो। कहां समाना है, कहां पता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है, तो सहयोग भी देना है, वो देता है, मैं शिव बाबा की सेवा कर रहा हूं, उसके नहीं, तो सहयोग भी देना है। तो 8 शक्ति आती है, सहन करना, समाना, निर्णय करना, क्या करना चाहिए इस व्यक्ति से, कैसे मिलना, कैसे बात करना, आगे एक बार धोखा होता है, दोबारा ना हो, तो गुणों को यूज करना पड़ता है। तो ये चिंतन करने से, मुरली सुनने से होता है, एकदम अपने आप नहीं आएगा, पता चल गया, इधर हाथ लगाने से शौक लगता है, दोबारा हाथ लगाने जाओ, अरे उस दिन शौक लगा था, अभी ध्यान देना है, कुछ लगा के हाथ लगाना है, उस वक्त जाना पड़ेगा, प्लग ऑन करना है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, कुछ लगा करके ध्यान से लगाते हो, किनारा नहीं करते हो, नफरत नहीं करते उससे, पता है वो गुस्सा करता है, लेकिन मिलो, बाबा का बच्चा है, नफरत नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, घृणा नहीं करो, समझ से बात करो, पता है उसका गुण ऐसा है, उसके बाद वो इतना जोर से बोलता है, वो ऐसे बोलता है, ठीक है, वो उसका, मुझे कैसे बोलना है, वो मुझे एक गुण यूज करना पड़ता है। तो ये कब होगा? तो जितना आप ज्ञान सुनते हो तो बाबा सिखाता है, बच्चे आप चुप रहो, आप सहन करो, फिर आप पूछेंगे कितना दिन हम चुप रहे, तो वो गुस्सा करता रहे, वो गलत करता रहे, हम चुप रहे, पूछेगा, आपका भी जवाब आएगा, है ना। हाँ, तो भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी होती है, एक दिन दो दिन सुनो, चुप रहो और बाबा को सुनाओ। फिर आया कि मुझे परिवर्तन करो, करो, उसको परिवर्तन नहीं करना, हम कहते हैं इसको चुप करना है, नहीं, उसको चुप नहीं, मुझे चुप होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको कहा स्व परिवर्तन करना है। वो अगर ऐसा करता तो मुझे ऐसे कर्म नहीं करना, ऐसे बोल बोलना नहीं है, ऐसे अगर तो डिस्टर्ब होता उसके सामने नहीं जाना है, तो मुझे प्रबंध करना है उसको। हम क्या करते हैं अभी, उसको कैसे चेंज करो वो सोचते हैं। तो ये दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हो, ये संभव नहीं है, ड्रामा में उसका हर एक का अपना पार्ट है, उसको जिस दिन लगेगा मैं गुस्सा करता हूं ये ठीक नहीं है, तो उसके भी बाबा ने बताया, अगर आप जितना अपने को परिवर्तन करने का प्लान करते हो, प्लानिंग करना पड़ता है, जब भी इसके सामने आओ ये गलत बोलता है, इस समय इसके सामने जाना नहीं है, अगर वो कुछ बोलता है तो मुझे जवाब देना नहीं, चुप रहना है, कोई अच्छा हो गलत भी बोलता है 5-10 मिनट मुझे चुप रहना है, जवाब देना है बाद में। तो ये सारा मुझे परिवर्तन, तो उसको ये देखने से गुस्सा आता है, तो मुझे ऐसे बोल बोलना नहीं, ऐसे कर्म नहीं, मुझे परिवर्तन करना है। तो ये अगर आप करते हो, थोड़ा समय लगेगा, एक महीना, दो महीना, एक साल भी लगेगा, एक दिन रियलाइज उसको होगा कि देखो हम इतना बोलता हूं, इतना कुछ करता, ये एक शब्द नहीं बोलता है। उसका परिवर्तन करने के लिए मुझे सहन करना ही उसका परिवर्तन करने की विधि, लेकिन ये संभव नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। करना चाहे ज्ञान है, साधारण मनुष्य जो है वो नहीं कर सकता है। जिसके अंदर अच्छा लक्ष्य है और ज्ञान अच्छी तरह से समझा है, कर्मों की गति को समझा है, तो वो व्यक्ति वर्तमान सहन करता है। पता है उसको दवाई खाते समय बहुत कड़वा है, ये दवाई कड़वा खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं कड़वा है बहुत खा नहीं सकता हूं, तो उसकी बीमारी कैसे ठीक होंगी। कुछ बीमारी ठीक करना चाहते हो तो खाते समय गलत लगता है, सहन करना पड़ता है थोड़े समय के लिए, उसका रिजल्ट सारे कल्प के लिए। बाबा ने कहा अभी हार मानना, सारे कल्प के लिए हार के योग्य बनना, सारी दुनिया हार पहनाएंगी, लेकिन अभी हार मानना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं। भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे लिए सहन करो, मैं चाहता हूं कि परिवर्तन करना सारे सृष्टि के लिए, आपका भाग्य बनाना है तो मेरे मत पर चलो। आज मुरली में कहा मेरे श्री मत पर चलो तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, पद्मा पद्म पति बन सकते हो अपने आप। नहीं, बिना बीज बोए हुए कुछ उगेगा नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो ये तीन प्रकार के खजाने, ज्ञान का खजाना, ज्ञान सुनने से, दस दफा मुरली पढ़ने से, लिखने से नहीं होगा, एक ही शब्द बस रोज 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में, तो उसकी विधि याद रखना। दूसरा शक्ति योग में अमृत वेले शाम को बैठते हो, पहले अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर, मुझे उनके जैसे पवित्र बनना है, क्या करो, किसमें पवित्रता, वो शांति का सागर है तो मैं उसके जैसे शांत शीतल कैसे, क्या करो उसके लिए, उनसे बात करो इसी के ऊपर। शिव बाबा ज्ञान का सागर, कैसे आके ज्ञान सुनाता है, मैं भी उनका ज्ञान सुनकर औरों को कैसा सुनाऊं, मास्टर ज्ञान का सागर कैसे बनूं। तो एक एक शक्ति के ऊपर एक एक मिनट भी चिंतन करो, 8 मिनट। मन बुद्धि कहां जुड़ी, अग्नि से, इसको योग अग्नि कहा, इसी को बीज रूप स्थिति कहा, इसी को कहा योग अग्नि है, ज्वालामुखी, अग्नि के अंदर भस्म होता है। जैसे आप इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया है तो आपको सूर्य की किरणें लगती है नहीं, अगर सूर्य की किरणें चाहे आप शरीर को लेके बाहर जाओ, वो आया हुआ है, उसके सूर्य की किरणें पड़ती, उधर धूप में बैठो पसीना आ जाएगा। तो शिव बाबा आया है तो आत्मा के पाप मिटाने के लिए, शरीर के नहीं, शरीर के दुख दर्द बीमारी डॉक्टर करेगा। आप पतित आत्मा को पावन, ये भी याद रखना, आत्मा के लिए। तो आत्मा समझ, अगर शिव बाबा के सामने जाते उसके एक एक शक्तियों का चिंतन करते हो तो वो शक्ति आप अपने अंदर जमा करते हो। तो शक्ति के खजाने जमा कर, जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, नहीं मुझे चिल्लाना नहीं, सहन करना है, मैं तो थोड़ा दर्द हो बहुत चिल्लाते हो, बहुत तड़पते हो, तो कहां से आएंगे, तो योग अग्नि। और कुछ पाप किया है उसको मिटाना है तो इस अग्नि, जो आप कहेंगे पाप कहां है दिखाओ, स्वप्न बताते हैं, जब रात को आंखें बंद करके स्वप्न आते सोते हो, स्वप्न कहां से आए, ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर, स्वप्न जो आते हो कहां से आए, अंदर भरे हुए हैं। अगर इस प्रकार तपस्या करते हो तो पाप मिटता, पता चलता है ये स्वप्न बार बार आता है, आता था, अभी एक महीना रोज योग कर रहे, ये सपना भी आना कम हो गया। तब विश्वास होता है कि अंदर की बीमारी मिट रही है। ये गोली खाया, सिर दर्द थोड़ा ठीक हो गया, और खाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो दवाई लेंगे तो बीमारी जाएंगे ना, तो विधि पूर्वक योग चाहिए। तो ज्ञान, शक्ति और गुण, एक एक कर्मों के अंदर गुण चाहिए, दैवी गुण है। एक एक याद करो, सहन कब करना चाहिए, कहां समाना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जितना आप मुरली सुनते हो रोज ध्यान से विधि पूर्वक लिखते हो, दो चार पॉइंट लिखो, भले ले लो एक पॉइंट जो चिंतन करने के लिए। शाम तक किसी ने पूछा आज बाबा ने ये कहा, तब समझना मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। सवेरे सुनावा, रात को अगर अपने आप आपके अपने परीक्षा ले लो, रात को आज बाबा ने क्या कहा था तुरंत याद आया, तब के हां अब मेरे बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो रही है। तो अगर याद है तो अपने आप कर्मों के अंदर भी आएगा, कर्म श्रेष्ठ होगा, वाणी श्रेष्ठ होगी, विचार श्रेष्ठ होंगे, तो श्रेष्ठ जीवन बनेगा। श्रेष्ठ जीवन देवी देवताओं का अपने आप में बनेगा। समझ में आया, ये चार प्रकार के खजाने, तीन प्रकार के खजाने कैसे जमा करना चाहिए। अपने आप जमा होंगे तो बाबा कहता है शक्ति जमा करने का समय है, खजाने जमा संगम पर होता है, सत्युग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, वहां खत्म करना है, वहां यूज करना है, वहां जमा करना है। समझ में आया। ओम शांति।
Oh, करे क्या ही दवा तेरी ना।